कल्पना कीजिए, हजारों साल पुराना एक बहुत ही धूल भरा दस्तावेज, उस पर लिखा एक अकेला अक्षर जो समय के साथ या शायद मोमबत्ती की कम रोशनी के कारण थोड़ा सा घिस गया है।
और उस एक छोटे से अक्षर के घिसने से मेरा मतलब है पूरी दुनिया के न्याय, सजा और धर्मशास्त्र की परिभाषा ही पलट जाती है।
बिल्कुल, आज की इस गहरी चर्चा में हम कोई साधारण किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से को खंगालने जा रहे हैं जहां भाषा की एक छोटी सी उलझन ने, मतलब एक छोटे से शब्द ने, सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
और सच कहूं तो ये सिर्फ भाषा की उलझन नहीं है, ये मानव स्वभाव, हमारी उम्मीदों और न्याय के उस अजीब विरोधाभास की कहानी है जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था।
सही कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल पत्थर की लकीर होते हैं ना, एकदम स्पष्ट।
हाँ, लेकिन जब आप उनकी गहराई में उतरते हैं तो वो एक जटिल पहेली की तरह सामने आते हैं।
और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है, डॉक्टर रॉबर्ट चिशोन के लेक्चर के नोट्स। उनका शीर्षक है यशाया 52:12-53:12, द सफरिंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यानी ईश्वर का पीड़ित सेवक।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक रहस्यमयी सेवक का वर्णन न्याय व्यवस्था की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है और कैसे एक राजा की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं।
जो कोई भी ये जानना चाहता है कि कैसे अनुवाद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पूरे इतिहास को आकार दे सकता है, उसके लिए ये विस्तृत विश्लेषण बहुत ही रोमांचक होने वाला है।
बिल्कुल, डॉक्टर चिशोल ने इस विषय को जिस तार्किक गहराई के साथ पेश किया है वो वाकई मतलब काबिले तारीफ है।
हाँ, उन्होंने हिब्रू भाषा की उन बारीक परतों को उधेड़ा है जो अक्सर सीधे साधे अनुवाद में, मतलब जो आम लोगों तक पहुंचता है, उसमें कहीं खो जाती हैं।
वही तो, और जब आप उन परतों को हटाते हैं तो जो अर्थ निकलता है वो कभी कभी हमारी सोच को ही झकझोर देता है। तो चलिए इस रहस्य की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो किसी भी प्राचीन दस्तावेज को पढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बनती है, अनुवाद।
अनुवाद की समस्या।
इसे ऐसे समझे जैसे कोई बहुत पुरानी धुंधली हो चुकी कानूनी संविदा या कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक छोटा सा शब्द भी इधर उधर हो जाए तो ये तय हो सकता है कि सजा किसे मिलेगी। डॉक्टर चिशोल्म यशाया 53:8 के अनुवाद का उदाहरण देते हैं, वहां मूल समस्या क्या है?
तो मूल समस्या हिब्रू भाषा की संरचना और उस समय के कानूनी संदर्भ को समझने में है। डॉक्टर चिशोल्म, जिन्होंने नेट बाइबल मतलब एनईटी बाइबल के अनुवाद में भी काम किया है, वे बताते हैं कि यशाया 53:8 के शुरुआती हिस्से को कई तरह से समझा जा सकता है।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने इसका अनुवाद एक अन्यायपूर्ण मुकदमे के बाद उसे ले जाया गया किया है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। उसी हिब्रू शब्द का मतलब जबरदस्ती लिया गया कानूनी फैसला या बिना किसी बचाव के अनुचित व्यवहार भी हो सकता है।
अच्छा, मतलब शब्द एक ही है लेकिन संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ की पूरी छाया बदल जाती है। एक अन्यायपूर्ण मुकदमा ये संकेत देता है कि प्रक्रिया ही गलत थी, जबकि जबरदस्ती लिया गया फैसला ये बताता है कि शायद सत्ता का दुरुपयोग किया गया था।
बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए नेट बाइबल के अनुवादकों ने अपने काम में इतने विस्तृत नोट्स शामिल किए हैं ताकि लोग ये समझ सकें कि उन्होंने कोई खास अर्थ क्यों चुना। लेकिन खैर, इस कानूनी भाषा के तुरंत बाद एक और बहुत ही दिलचस्प मुहावरा आता है।
कौन सा मुहावरा?
जीवितों की भूमि से काट दिया जाना।
अरे बाप रे, ये मुहावरा तो सुनने में बहुत नाटकीय लगता है।
अच्छा।
क्या इसका मतलब सिर्फ ये था कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया या किसी अंधेरी जेल में डाल दिया गया?
अगर हम इसे सिर्फ आज के चश्मे से देखें तो शायद ऐसा ही लगे, लेकिन प्राचीन निकटपूर्वी धर्मशास्त्र में जीवितों की भूमि वो जगह है जहां इंसान चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं।
हाँ, मतलब रोजमर्रा की दुनिया।
सही। तो जब कोई वहां से काट दिया जाता है तो इसका सीधा अर्थ मृत्यु है। वे इसे शियोल कहते थे, एक धुंधली परछाइयों वाली रहस्यमयी दुनिया जो जमीन के नीचे मानी जाती थी।
ओ, तो ये कोई जेल नहीं थी?
नहीं, ये जीवन का पूर्ण अंत था। इसका मतलब है कि उस सेवक का मुकदमा सिर्फ सजा पर खत्म नहीं हुआ बल्कि उसकी जान ही ले ली गई।
ये तो बहुत गंभीर बात है, और यहीं पर वो सर्वनाम मतलब प्रोनाउन वाली दुविधा आती है जिसका जिक्र मैंने उस धुंधले कॉन्ट्रैक्ट वाले उदाहरण में किया था। मुझे ये बात बहुत ही हैरान करने वाली लगी कि एक छोटे से अक्षर से पूरी कहानी का पीड़ित और अपराधी कैसे बदल सकता है।
हाँ, वो मेरे और उसके वाली बहस।
बिल्कुल, डॉक्टर चिशोन ने मेरे लोगों का विद्रोह और उसके लोगों का विद्रोह के बीच की बहस का जिक्र किया है। ये उलझन असल में है क्या?
ये वास्तव में अनुवादकों और इतिहासकारों के लिए एक क्लासिक पहेली है। सदियों से चले आ रहे पारंपरिक हिब्रू पाठ में, जिसे मैसोरेटिक टेक्स्ट कहते हैं, उसमें लिखा है मेरे लोगों के विद्रोह के कारण।
अच्छा,
अब अगर ये मेरे लोग हैं तो इसका मतलब है कि यशाया नबी बोल रहा है और वो अपने लोगों यानी इसराइल की बात कर रहा है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी खोज हुई मृत सागर के पास कुमरान की गुफाओं में।
हाँ, वो डेड सी स्क्रॉल है ना?
बिल्कुल, उन प्राचीन पांडुलिपियों में से एक में यह शब्द उसके लोगों का विद्रोह लिखा हुआ था।
अरे, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या किसी ने जानबूझकर शब्द बदल दिया था या कोई साजिश थी?
नहीं, जानबूझकर नहीं। इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक है। प्राचीन हिब्रू लिपि में दो अक्षर होते हैं, एक योद और दूसरा वाओ।
योद और वाओ, ठीक है।
योद एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रोक होता है, जैसे कोई छोटा कॉमा, और वाओ उससे बस थोड़ा सा लंबा स्ट्रोक होता है। अब कल्पना कीजिए कि कुमरान के भी लिपिक सदियों तक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में चमड़े या पेपरस पर इन ग्रंथों की नकल कर रहे हैं।
हाँ, उस जमाने में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी।
बिल्कुल, तो अगर कलम जरा सी फिसल जाए या स्याही समय के साथ थोड़ी फैल जाए तो योद आसानी से वाओ बन सकता है, और बस इतने से ही मेरे का अर्थ उसके में बदल सकता है।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक कलम के झटके से पूरी कहानी का कर्ता बदल गया। लेकिन अगर हम इसका अर्थ निकालें तो अनुवाद चाहे जो भी हो, नबी के लोग या उसके लोग, निशाना तो इसराइल की तरफ ही है।
निशाना वही है।
और सबसे बड़ी बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि विद्रोह लोगों ने किया, सजा लोगों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मृत्यु उस सेवक को मिली। ये तो पूरी तरह से प्रतिस्थापना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन।
बिल्कुल, सजा किसी और की और भुगत कोई और रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है।
लेकिन मृत्यु के बाद ये रहस्य और गहरा हो जाता है। यशाया 53:9 में उस सेवक को दफनाने की बात आती है और यहाँ एक बहुत अजीब सी स्थिति सामने आती है। ग्रंथ कहता है कि उसे अपराधियों के साथ दफनाने का इरादा था, लेकिन वो अपनी मृत्यु में एक अमीर आदमी के साथ था।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
वही तो, अपराधियों और अमीरों का ये मेल कुछ पच नहीं रहा है।
ये एक बहुत ही अजीब काव्यात्मक बेमेल है। हिब्रू में अपराधियों के लिए रिशायम शब्द का प्रयोग हुआ है। उस समय के समाज में किसी अपराधी को दफनाना एक बहुत ही अपमानजनक प्रक्रिया होती थी।
मतलब उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती थी।
बिल्कुल नहीं, उन्हें अक्सर शहर के बाहर किसी आम या सामूहिक कब्र में फेंक दिया जाता था। इसके विपरीत अमीर लोगों को बहुत ही सम्मानजनक चट्टानों में तराशी गई महंगी कब्रें मिलती थी।
तो ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के लिए कैसे हो सकती हैं?
यही तो उलझन थी। कुछ विद्वान तो इससे इतने परेशान हुए कि उन्होंने अमीर शब्द की जड़ें अरबी भाषा में ढूंढने की कोशिश की, ये साबित करने के लिए कि शायद इसका मतलब भीड़ या दुष्ट ही होगा।
अच्छा, मतलब वे शब्द का अर्थ ही बदलना चाहते थे ताकि बात समझ में आ जाए। लेकिन चिशोल्म इसे कैसे सुलझाते हैं?
चिशोल्म कहते हैं कि हमें भाषा को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक विषमता है, एक कॉन्ट्रास्ट।
कॉन्ट्रास्ट कैसे?
ये पाठ हमें बता रहा है कि मारने वालों का इरादा उसे अपराधियों जैसी शर्मनाक विदाई देने का था। वे उसे अपराधी ही मान रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हुआ वो इसके बिल्कुल उलट था। अगर हम इस प्राचीन भविष्यवाणी को नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट के चश्मे से देखें तो वहाँ वर्णन है कि यीशु को दो अपराधियों के बीच सूली पर चढ़ाया गया था।
हाँ, ये तो बहुत परिचित कहानी है।
लेकिन मृत्यु के बाद अरिमेथिया के यूसुफ नाम के एक धनी व्यक्ति ने उनका शरीर मांगा और उन्हें अपनी एक नई महंगी कब्र में रखा।
तो यहाँ विरोधाभास ही असल में सबूत है। एक अमीर आदमी की कब्र मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि हालांकि उसे अपराधियों की तरह मारा गया, लेकिन वो वास्तव में अपराधी नहीं था।
बिल्कुल, प्रकृति या नियति ने उसके अंतिम संस्कार में उसके निर्दोष होने की गवाही दे दी।
क्या बात है। लेकिन अरे रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। यशाया 53:10 की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी बात आती है जो किसी भी आम इंसान को विचलित कर सकती है।
आप किस हिस्से की बात कर रही हैं?
ग्रंथ कहता है कि ये ईश्वर की इच्छा थी, द लॉर्ड्स विल, कि उस सेवक को कुचला जाए। ये तो सरासर अन्याय लगता है। अगर आज कोई जज या कोई पिता किसी निर्दोष को सजा दे दे और कहे कि ये तो मेरी इच्छा थी, तो हम उस जज को पूरी तरह से भ्रष्ट कहेंगे?
ये सवाल उठना बहुत लाजमी है।
तो फिर ईश्वरीय न्याय में ऐसी क्रूरता कैसे हो सकती है?
आपका ये आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। सतह से देखने पर यह किसी किसी ब्रह्मांडीय बाल शोषण या क्रूरता जैसा ही लगता है, लेकिन डॉक्टर चिशोल में से उस समय के बलि और प्रायश्चित के बहुत ही जटिल तंत्र के भीतर रखकर समझाते हैं।
अच्छा, तो इसका कोई सांस्कृतिक संदर्भ है?
हाँ, वे इसे गतसेमनी के बाग में यीशु की प्रार्थना से जोड़ते हैं, जहां वे कहते हैं, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो।
यह कोई जबरदस्ती थोपी गई सजा नहीं थी, यह एक सोची समझी सहमति थी।
सहमति, लेकिन फिर भी एक निर्दोष को कुचलना, इसका कोई तो तार्किक कारण होना चाहिए।
कारण उस बीमारी के रूपक में छिपा है जिसका जिक्र पाठ में है। डॉक्टर चिशोल मिहाक पुनर्स्थापना भेंट या हिब्रू में अशामह का संदर्भ देते हैं।
अशामह, ये क्या होता है?
लेवी व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती थी तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था।
हाँ, लेप्रसी, बिल्कुल। जब वो ठीक होता था तो उसे समाज और ईश्वर के सामने खुद को शुद्ध साबित करने के लिए एक विशेष भेंट, जिसे अशामह कहते हैं, चढ़ानी होती थी।
तो क्या ये सेवक खुद को उस समाज के लिए एक भेंट के रूप में पेश कर रहा है जो पाप की बीमारी से ग्रसित है?
बिल्कुल, सेवक खुद एक अशामह बन रहा है। वो खुद को कुचले जाने दे रहा है ताकि उस आध्यात्मिक संक्रमण को खत्म किया जा सके जिसने पूरे समाज को बीमार कर रखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बलिदान का परिणाम क्या होता है।
क्या परिणाम होता है?
ग्रंथ कहता है कि मृत्यु के बावजूद वो सेवक अपने वंशजों को देखेगा और लंबा जीवन जिएगा।
मौत के बाद लंबा जीवन, ये तो ईश्वरीय आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। मृत्यु यहाँ अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा बन गई।
एकदम सही।
लेकिन यहाँ ये विषय एक ऐसे बौद्धिक मोड़ पर आ जाता है जहाँ धर्मशास्त्र और कानून आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर ये सब एक योजना थी तो इसका हम इंसानों की न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है?
बहुत गहरा असर आता है। ये शायद 53:11 में एक हिब्रू क्रिया है जिसका अर्थ है धर्मी बनाना या मेक राइचस। डॉक्टर चिशोलम बताते हैं कि ये हिब्रू व्याकरण में कॉजिटिव फॉर्म में है।
कॉजिटिव फॉर्म, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, ये क्या है?
पॉजिटिव फॉर्म का मतलब है कि कोई काम खुद ब खुद नहीं हो रहा है, बल्कि कोई बाहरी ताकत वो काम करवा रही है या उसका कारण बन रही है।
अच्छा, मतलब कोई और उसे अंजाम दे रहा है।
हाँ, यानी सेवक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम धर्मी हो, बल्कि वो अपनी कार्रवाई से लोगों को धर्मी बना रहा है। और यहीं पर धर्मशास्त्र की दो सबसे बड़ी और जटिल अवधारणाएं टकराती हैं, जस्टिफिकेशन जिसका मतलब है निर्दोष घोषित करना, और सैंक्टिफिकेशन जिसका मतलब है चरित्र को बदलना या पवित्र करना।
अरे, इसे मैं अपने एक पसंदीदा कानूनी उदाहरण से समझाना चाहूंगी।
हाँ, बताइए।
मान लीजिए आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे और आपको अदालत में पेश किया गया। जज के सामने आप दोषी हैं, लेकिन तभी कोई अजनबी आता है और आपके ट्रैफिक चालान का भारी जुर्माना भर देता है। अब कानूनी रूप से आप पर कोई कर्ज नहीं है, आप मुक्त हैं। ये हुआ जस्टिफिकेशन, कानूनी तौर पर दोष मुक्त होना।
बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उस जुर्माने के भर जाने से आपका स्वभाव बदल जाएगा? क्या आप अगली बार फिर तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे?
ठीक यही तो कैच है, यहीं पर सैंक्टिफिकेशन आता है। ये ऐसा है जैसे उस अजनबी ने सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरा बल्कि आपकी गाड़ी का इंजन ही बदल दिया, या आपके दिमाग में एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि अब आपको ओवर स्पीडिंग करने की इच्छा ही नहीं होती। आपका स्वभाव ही बदल गया।
सटीक। चिजोलम का तर्क है कि इस हिब्रू शब्द में ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। वो सेवक सिर्फ कानूनी बही खाते में लोगों को निर्दोष नहीं दिखा रहा है, वो उनके दिलों को भी बदल रहा है।
मतलब वो उन्हें अंदर से बदल रहा है।
हाँ, ये भजन संहिता 51 में डेविड की उस प्रार्थना जैसा है जहां वे सिर्फ माफी नहीं मांगते बल्कि कहते हैं मुझमें एक स्वच्छ हृदय उत्पन्न कर।
लेकिन एक बात बताइए, क्या हर विद्वान इस बात से सहमत था? क्योंकि अगर हम तर्क की बात करें तो ये पूरी व्यवस्था ही उल्टी नजर आती है। मैंने पढ़ा था कि हैरी ओलिंस्की नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध यहूदी विद्वान ने इस विचार का कड़ा विरोध किया था।
हाँ, ओलिंस्की का विरोध बहुत ही कड़ा और तर्कसंगत था। वे एक ऐसे यहूदी विद्वान थे जो तोरा के सख्त कानूनों को बहुत गहराई से समझते थे।
तो उनकी आपत्ति क्या थी?
उनका तर्क था कि पुराने नियम के अनुसार किसी दोषी व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना न्याय का सीधा सीधा मजाक उड़ाना है। नीति वचन में स्पष्ट लिखा है कि जो दुष्टों को निर्दोष ठहराता है ईश्वर उससे घृणा करता है।
हम्म, तो एक सच्चा जज कभी किसी अपराधी को निर्दोष नहीं कह सकता।
बिल्कुल, इसलिए ऑर्लिंस्की का मानना था कि यहाँ प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित मतलब सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट का कोई विचार हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार ये विचार हिब्रू न्याय के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ था।
ऑर्लिंस्की का तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठोस लगता है। फिर डॉक्टर चिशोल्म ने अपनी किताब के मार्जिन में इसका क्या जवाब दिया? मैंने सुना है उन्होंने बस एक लाइन लिखी थी, वेलकम टू द गॉस्पेल हैरी, यानी सुसमाचार में आपका स्वागत है हैरी।
हाँ, चिशोल्म की वह लाइन अपने आप में एक मास्टरपीस है। चिशोल्म असल में ऑर्लिंस्की से कह रहे हैं, हैरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पारंपरिक कानूनी मानदंड के हिसाब से ये गलत है, लेकिन यही तो पूरा पॉइंट है।
अच्छा, मतलब यही तो असली बात है।
हाँ, विडंबना यही है कि कानूनी मानदंड पलट गया है, न्याय टूटा नहीं है, उसे अनदेखा नहीं किया गया है। कर्ज तो चुकाया गया है लेकिन किसी और के द्वारा, सेवक ने दूसरों के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। ये सामान्य न्याय नहीं है, ये एक असाधारण अनुग्रह है जिसे ग्रेस कहते हैं।
ये सचमुच रोंगटे खड़े करने वाला है। न्याय की पूरी इमारत को इस तरह से पलट दिया गया कि सजा भी पूरी हुई और अपराधी भी बच गया। लेकिन अब जब हमने ये देख लिया है कि इस सेवक ने इतना कुछ किया है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि असल में ये सेवक है कौन।
और इसे सुलझाने के लिए डॉक्टर चिशोल्म हमें एक तार्किक खेल की ओर ले जाते हैं, जिसे वो तीन चालों में शय और मात कहते हैं।
अरे, ये किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री उपन्यास की तरह लग रहा है, जहां जासूस कमरे में मौजूद सभी संदिग्धों को एक एक करके बाहर करता जाता है, जब तक कि सिर्फ वही व्यक्ति नहीं बचता जिस पर शायद सबसे कम शक था। चलिए हम भी वो जासूस बनते हैं।
चलिए,
पहली चाल, क्या ये सेवक खुद इजराइल राष्ट्र हो सकता है?
कई लोग ऐसा ही मानते थे, लेकिन चिशोल्म इसका खंडन करते हैं। वे यशाया के ही पिछले अध्यायों जो 40 से 48 हैं, उनका संदर्भ देते हैं।
वहाँ क्या लिखा है?
वहाँ इजराइल को बार बार एक अंधा, बहरा, पापी और निर्वासित राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है, जिसे इजराइल याकूब कहा गया है। और ये जो रहस्यमयी सेवक है, इसका काम तो लोगों को उनके पापों से बचाना है।
तो खुद ऑर्लिंस्की जैसे आलोचकों ने भी ये माना था कि जो राष्ट्र खुद पाप में डूबा हो, खुद बीमारी से पीड़ित हो, वो अपना ही उद्धारकर्ता या डॉक्टर कैसे हो सकता है?
बिल्कुल, इसलिए राष्ट्र तो नहीं हो सकता।
तो राष्ट्र को संदिग्धों की सूची से बाहर कर देते हैं। दूसरी चाल, अगर ये राष्ट्र नहीं है तो क्या ये कोई नबी है? शायद यशाया खुद अपने बारे में लिख रहे हों।
ये भी संभव नहीं है। अगर आपको यशाया के अध्याय 6 का वो मशहूर प्रसंग याद हो, जब नबी को ईश्वर के सिंहासन के दर्शन होते हैं।
हाँ, जहाँ वे डर जाते हैं।
सही, वहाँ यशाया अपनी शुद्धता का दावा नहीं करते, बल्कि वो डर से कांपते हुए कहते हैं, मेरे होंठ अशुद्ध हैं और मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच रहता हूँ।
और इस 53वें अध्याय के सेवक गीत में भी नबी स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं। नबी खुद को उन भटकने वालों में गिन रहे हैं।
बिल्कुल, वे खुद को उस निष्पाप सेवक के रूप में पेश नहीं कर सकते जो दूसरों का बोझ उठा ले।
तो राष्ट्र बाहर, नबी बाहर, अब तीसरी और आखिरी चाल बचती है। अगर ये दोनों नहीं है तो क्या ये मसीहा है?
तर्क के अनुसार केवल मसीहा ही इस विवरण में फिट बैठता है, लेकिन और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा लेकिन आता है, ये वो मसीहा नहीं था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे।
यही तो वो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगर ये सेवक मसीहा ही था तो लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाए? उनके पास तो ये पूरा ग्रंथ था।
क्योंकि वे किसी और ही तस्वीर की तलाश में थे। इसे समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। प्रथम शताब्दी के यहूदिया की कल्पना कीजिए,
जहाँ रोमन साम्राज्य का कब्जा था।
हाँ, रोमन सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, भारी टैक्स वसूले जा रहे हैं और विद्रोहियों को सरेआम सूली पर चढ़ाया जा रहा है।
एक बहुत ही क्रूर माहौल।
बिल्कुल, प्राचीन यहूदी साहित्य जैसे कुमरान के स्क्रोल्स और भजन संहिता के सुलेमान को पढ़ें तो पता चलता है कि लोग कितनी बेताबी से आजादी का इंतजार कर रहे थे। उनके दिमाग में मसीहा का सिर्फ एक ही चित्र था, जीत और महिमा।
यानी वे एक नए दाविद की उम्मीद कर रहे थे, एक ऐसा योद्धा राजा जो आएगा, अपनी तलवार निकालेगा, रोमनों को खदेड़ देगा और पूरी दुनिया में न्याय स्थापित करेगा। यशाया 9:11 और भजन संहिता 2 में इसी विजेता मसीहा का जिक्र है जो दुश्मनों के सिर कुचल देगा।
बिल्कुल, जब आप पर अत्याचार हो रहा हो तो आप एक एक्शन हीरो ही चाहते हैं। लेकिन यशाया 53 मसीहा का एक दूसरा चित्र पेश करता है, विरोध और पीड़ा का चित्र। चिशोल्म यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि समाज को राजनीतिक रूप से बदलने से पहले लोगों के दिलों को बदलना जरूरी है।
वे पुराने नियम के न्यायियों मतलब जजेस के इतिहास का उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो इतिहास जहाँ एक अंतहीन चक्र चलता रहता है। इसराइल पाप करता है, दुश्मन उन पर कब्जा करते हैं, वे ईश्वर से पुकारते हैं, ईश्वर एक सैन्य नेता भेजता है जो उन्हें आजाद कराता है,
लेकिन जैसे ही शांति आती है वे वापस अपने पापों में लौट जाते हैं।
बिल्कुल, ये चक्र बार बार दोहराया गया। इससे ये साबित हो गया कि बाहरी सैन्य आजादी कभी भी आंतरिक आध्यात्मिक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। जब तक दिल नहीं बदलता, इतिहास बस खुद को दोहराता रहता है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई देश एक भयंकर महामारी से जूझ रहा हो। लोग एक ऐसे एक्शन हीरो का इंतजार कर रहे हैं जो हथियारों के साथ आए और उनके सारे राजनीतिक दुश्मनों को खत्म कर दें।
बहुत सटीक।
लेकिन उनके दरवाजे पर एक मेडिक या डॉक्टर आ गया है। लोग उस डॉक्टर को देखकर निराश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें तो योद्धा चाहिए। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि अगर अंदर की बीमारी ही ठीक नहीं होगी तो बाहरी आजादी मिलने पर भी वे सब वैसे ही मारे जाएंगे।
क्या बेहतरीन एनालॉजी है। और इसीलिए इन दोनों भूमिकाओं का योद्धा और पीड़ित सेवक का एक ही व्यक्ति में मिलना बहुत जरूरी था। और डॉक्टर चशोल मानते हैं कि यशाया की पुस्तक में हमें एक समाधान मिलता है जिसे वे पांचवा सेवक गीत कहते हैं।
ये कहाँ है?
ये यशाया के अध्याय 61 में है।
यशाया 61, जहाँ लिखा है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। ये मशाक या अभिषेक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से मसीहा शब्द बना है ना?
बिल्कुल। इस अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसे राजाओं की तरह अभिषेक किया गया है, लेकिन उसका काम नबियों या उस पीड़ित सेवक वाला है। गरीबों को सुसमाचार देना, टूटे दिलों को जोड़ना, बंधकों को आजाद करना।
तो ये राजा और नबी दोनों की भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम है।
हाँ, ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में नाजरात के एक आराधनालय में इसी हिस्से को पढ़ा था और स्पष्ट रूप से इसे खुद पर लागू किया था। उन्होंने कहा था कि आज ये धर्मशास्त्र तुम्हारे सामने पूरा हुआ।
ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ता है ये देखना सच में अद्भुत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने आज क्या देखा?
हमने बहुत कुछ देखा।
हमने शुरुआत की एक धुंधले दस्तावेज और अनुवाद की एक छोटी सी दुविधा से, मेरे लोग या उसके लोग। हमने देखा कि कैसे उस एक बारीकी ने प्रतिस्थापना और बलिदान की पूरी तस्वीर साफ कर दी। फिर हमने देखा कि कैसे न्याय की पारंपरिक परिभाषा उलट गई।
हाँ, जहां जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन एक साथ मिलकर एक नया अर्थ पैदा करते हैं।
और अंततः कैसे मसीहा के दो अलग अलग रूपों, एक विजेता राजा और एक पीड़ित सेवक ने इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक को आकार दिया।
और ये सारी चर्चा हमें केवल प्राचीन ग्रंथों के बारे में नहीं बल्कि हमारे अपने मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाता है कि कन्फर्मेशन बायस कितनी पुरानी चीज है।
मतलब हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं।
बिल्कुल, हम अक्सर नई जानकारी को अपनी पुरानी उम्मीदों के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। प्राचीन यहूदिया के लोग सिर्फ एक विजेता राजा चाहते थे जो उनकी राजनीतिक परेशानियां दूर कर दे। इसलिए जब पीड़ित सेवक का विचार उनके सामने आया तो वे उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाए। हम अपनी अपेक्षाओं के कारण अक्सर पूरी तस्वीर देखने से चूक जाते हैं।
यह एक बहुत ही गहरा सच है। और इसी विचार के साथ मैं आज एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये सोचने वाली बात है कि अगर एक प्राचीन समाज को ये विचार स्वीकार करने में इतनी कठिनाई हुई कि सच्चे नेतृत्व के लिए सिर्फ सैन्य ताकत, राजनीतिक जीत या दुश्मनों को कुचलना काफी नहीं है बल्कि गहरी पीड़ा, सहानुभूति और बलिदान की आवश्यकता होती है, तो आज के हमारे आधुनिक समाज की क्या स्थिति है?
ये आज के दौर का शायद सबसे जरूरी सवाल है।
क्या आज हमारी सफल लीडर की परिभाषा बदल गई है, या क्या आज भी इतने हजार साल बाद हम अवचेतन रूप से सिर्फ उसी विजेता राजा की तलाश में हैं? कोई ऐसा जो आक्रामक हो, जो सारी ताकत अपने हाथ में ले ले और हमारी ओर से हमारे दुश्मनों को हरा दे।
ये सोचने पर मजबूर करता है।
या फिर हम एक ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो खुद हमारे दुख साझा करे और हमें भीतर से बदलने की बात करे। जो प्राचीन शब्द उस मोमबत्ती की रोशनी में धुंधले कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे गए थे, वे आज भी हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारे दिलों के लिए उतने ही मायने रखते हैं। सोचने वाली बात है ना?
यकीनन, ये हमेशा हमें खुद पर, अपने नेताओं पर और अपनी अपेक्षाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है।
तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, सीखते रहिए।